संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। आज जो सुबह का व्याख्यान चल रहा था और उसमें से जो विद्यार्थियों के कमेंट्स आए, उस कमेंट्स के आधार पर मुझे कुछ कहना है। अंत में ऐसा कहा गया, दो मुद्दों पर बात हुई थी कि एक तो ये कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति 24 घंटे हमारे विद्यमान है और उसमें वो बनारसी दास का छंद की चर्चा हुई थी कि 24 घंटे में हम जो कुछ कर रहे हैं, यदि हम आलू नहीं खाते हैं तो ये भी हमारे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, क्योंकि दुनिया को इतना प्रिय लगता है और शायद हम खाते तो हमें भी लगता है, जब खाया ही नहीं तो पता ही नहीं कैसा है। तो लेकिन उसमें लिखे कि अनंत जीव हैं जो हमें आज तक दिखाई दिए नहीं और कभी दिखाई देंगे नहीं, ऐसे चाहे जैसे यंत्र बन जाए। जो यंत्रों से दिखाई देते हैं वे जो हम भगवान ने बताए हैं उनसे अलग हैं, वे स्थूल हैं, मतलब वे जो अनंत जीव हैं वे चलते फिरते नहीं दिखते हैं तिस जैसे। ये तो तुमने देखा और उसमें कुछ दिखा तो ये एक्स्ट्रा बात हो गई। तो इस तरह से हमारी हर बात जो सुबह से शाम तक क्रिया भगवान की आज्ञा के अनुसार हो रही है वो सब उनकी भक्ति का ही परिणाम है, हम 24 घंटा भक्ति हैं। दूसरा जो मुद्दा था, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उद्धृत किया है पंडित टोडरमल जी ने, और 50 इकाई की टीका में जो अमृतचंद्राचार्य की टीका है समय व्याख्या नाम की, उस टीका का ये कोटेशन है। पंडित जी ने अपनी स्मृति के आधार पर अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा होगा। उस वक्त इतना आसान नहीं था कि फटाफट हमने तुमसे कहा और तुमने किताब खोल के बता दी, और जैसी बाइंडिंग वाली किताबें हों तो इन्हें धड़ाधड़ निकाल दिया हमने। कोई भी शास्त्र को मंदिर से निकालना पड़ता था, फिर उसे खोलना पड़ता, फिर एक एक पेज देखना पड़ते थे, और पेजों की भी व्यवस्था नहीं थी, जितनी प्रतियां थीं उतने पेज, हरेक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता था। इसलिए उनकी प्रतिभा थी कि उन्हें याद रहा और उन्होंने लिख दिया। हमने नीचे उसको लिखा है, सिर्फ इसलिए लिखा है कि वो जो 50 इकाई में जहां उन्होंने कहा है कि 50 इकाई की व्याख्या में ये बात है, व्याख्या माने समय व्याख्या। उस टीका का नाम समय व्याख्या है, उनने व्याख्या कहकर टीका का नाम बताया है आपको, सामान्य व्याख्या नहीं कहा। क्या ऐसे आत्मख्याति के साथ व्याख्या तो नहीं लगी ना, टीका भी नहीं लगी है, तत्व प्रदीपका के साथ भी नहीं लगी है, लेकिन उसके साथ पूरा नाम क्या है उसका, समय व्याख्या। तो 50 इकाई है व्याख्या में, मैंने उनकी व्याख्या नाम की टीका में अमृतचंद की में ये बात कही और उन्होंने लिखी, तो वो नीचे पूरा लिखा हुआ है। खैर वो तो आप पढ़ लेना, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। कहने की बात ये है कि इसमें लिखा, इसमें है नीचे है अयम ही, उसमें है इयम भक्ति, संस्कृत के विद्वान थे ना तो भक्ति शब्द उन्होंने जोड़ा, तो उसमें स्त्री का विशेषण स्त्रीलिंग चाहिए ना, इसलिए ईएम लिखा, पर वहां उन्होंने भक्ति शब्द जोड़ा नहीं तो अयम शब्द का प्रयोग किया। खैर अब इसमें उलझ जाता हूं मैं, असली मुद्दे की बात यह है कि इसमें कदाचित शब्द का प्रयोग है, क्वचित 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 ज्ञान नोपी भवती। तो क्वचित माने क्या है, कोई अर्थ करते हैं कि ज्ञानियों के, लेकिन इसका अर्थ है कुछ शब्द को इस डिक्शनरी में देखा विशेष करके और उसमें से निकला कभी कभी, किसी अपेक्षा भी इसका अर्थ नहीं है। यानी ये बताना चाहते हैं कि जिसे तुम भक्ति कहते हो वो भक्ति कभी कभी होती है। और दो विरुद्ध हो गए ना कथन, और मेरे को बोलने का विकल्प इसलिए आया क्योंकि अंत में जो कमेंट्स किया गया अंतिम वाक्य में, उसने ये कहा, उस पर तो वजन दिया कि 24 घंटे है, लेकिन कभी कभी है। कभी कभी का मतलब बहुत कम होता है, अकेला ऐसे नहीं। कभी कभी, कभी कभी मतलब जब हम किसी बात के लिए कभी कभी कहते हैं, कभी कभी हम हमारे यहां खाना भी मैं ये भी बनता है कभी कभी, साल में एक आध दो दफे बन जाता है, समझ में आया ना आपकी। में जिस भक्ति को हमने अनिवार्य बना लिया है और हम घोषणाएं करते हैं, एक तो वो भक्ति ही नहीं है, भक्ति की परिभाषा बनारसी दास ने वो दी है और हम उसको ही भक्ति मान के चलते हैं, तो इसके बिना बिल्कुल वो है ही नहीं। उसके लिए इसमें स्पष्ट शब्दों में कभी कभी लिखा है। कभी कभी का मतलब ऐसा नहीं कहें कभी चूक जाएं तो ठीक है, एक आध दिन चूक जाएं, महीना भर हम रोजाना भगवान की पूजा करते हैं, एक आध दिन नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है। एक आध दिन नहीं कर पाई नहीं है, क्या है, एक आध दिन कर पाई, समझ दादा ख्याल में आई बात, ये है इसका अर्थ। बहुत कठिन बात है, डंडे पड़ने जैसी बात है। हमारी तुम्हारी तो बात जाने दो, टोडरमल जी भी होते तो उनमें भी पढ़ते, और इस समाज का कोई भरोसा नहीं है, अमृतचंद्र होते हैं तो उनमें भी पढ़ते। यानी ये कहते हैं कि ये तो बहुत रेयर की बात है। जिस सौधर्मेंद्र का हम उदाहरण देते हैं वो बहुत रेयर केस है। तीर्थंकर का जन्म कब कब होता है नाचने का, वो कभी कभी नाचता है, बहुत रेयर, समझ गए ना। और हमको वो उसका बिजनेस बनाना है, हमको उसको रोजाना नाचना है उसके नाम पर। यानी अनिवार्य नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूं, उसको हल्का कर दिया अंत में कह के, उस पर वजन ही नहीं दिया, उसको पॉइंट ही नहीं बताया किसी ने, क्या किसी ने नहीं बताया कि नहीं बताया, एक दो की बात जाने दो, लेकिन सबके ध्यान में द्वारा वो बात आवे इसके लिए मैं बोल रहा हूं। उनकी उसकी आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे विद्यार्थी हैं, उनकी क्या आलोचना करना, 5 मिनट में उन्हें बोलना है तो सभी बात थोड़ी बोल सकेंगे। लेकिन मुझको इस बात पर फिर ध्यान आकर्षित करना था, क्या क्या कह रहे वो, जिसको हमने रोजाना का काम बना दिया है वो उसके लिए पंचाष्टिकाय की टीका समय व्याख्या ये कहती है कि वो कभी कभी की चीज है, समझ नहीं ना। अपन सप्ताह में एक बार पूजन करते हैं ना, ऊपर जाकर के सब जने मिलकर के विद्यार्थी, वैसे तो रोज ही नहीं सब जने करते ही हैं, तो वो कभी कभी में पर्याप्त है। मतलब एक महीना में एक दफे भी करते तो भी वो कभी कभी में आता, 6 महीना में एक बार करते तो भी वो कभी कभी में आ जाता, तो वो तो 7 दिन में एक बार है। माने जिसको हमने कैसा प्रतिज्ञा लो कि हम रोजाना पूजा करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मैं ऐसा कहकर पूजन करने वालों को हैरस नहीं करना चाहता, ख्याल नहीं ना। कोई वो ऐसा खराब काम नहीं है कि जिसके लिए निषेध किया जाए, कि निषेध की आवश्यकता पड़े, तुम लोग भी कहीं नहीं करना, कदाचित है ना, लेकिन कदाचित तुम्हारे जीवन में नहीं बन पाए और बहुत कम बन पाए तो भी उससे अपने को, हमें भगवान की बात में श्रद्धा नहीं है, हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं ऐसा फीलिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में अपराध बोध की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वाध्याय नहीं कर पाया तो अपराध बोध की जरूरत है, क्योंकि उसमें डंके की चोट कहते हैं। स्वाध्याय करना चाहिए, वो मोक्ष मार्ग का उपायांतर है। मोक्ष मार्ग के उपाय को एक दिन भी एक समय भी छोड़े जाने लायक है। दोनों की तुलना करता हूं ना कभी कभी मैं कि भगवान की भक्ति और भगवान की जनवाणी का स्वाध्याय, इन दोनों में क्या अंतर है, तो बहुत तर्क और युक्तियां देता हूं, वो तुम लोगों ने सुनी भी हैं, उसे मैं अभी नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा आगम प्रमाण है। इस आगम प्रमाण को पूजा के निषेध के अर्थ में प्रयोग नहीं करना। क्या लेकिन इसके कितना स्थान है, कितनी आवश्यकता है, उसको हम अपने गहराई हृदय में गहराई से समझें और अपने जीवन को बैलेंस बनाने के लिए हमें इसमें इसको कितना महत्व देना चाहिए समझे ना, और हमारी जो चीजें हैं उनको कितना महत्व देना चाहिए, उस बात से हमें बहुत उससे चिंता मतलब मजबूती से समझना चाहिए। इतना अनिवार्य अंग नहीं है, वो साफ है ना। आज दिने दिने देव पूजा गुरु पास्ती श्रीमन तपा दिने दिने, तो अब वो उनमें जो देव पूजा लिखी है, भक्ति लिखी है ना, अब वो पूजा कैसी होती है, पूजा क्या है, ये तुमने बना ली, तो बनारसी दास का छंद यहां लगाओ ना। हमारे 24 घंटा हम उनकी पूजा ही कर रहे हैं, उनकी वाणी पढ़ रहे हैं बहुत सम्मान पूर्वक, सोते सोते रात के जब सोते सोते जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते सोते हैं, क्यों सपना भी देखते हैं तो उसमें जनवाणी ही की चर्चा ख्याल में आती है, फिर सुबह उगते हैं तो फिर वो सारा गुणानुवाद जो भी हमारा है वो सब उस भक्ति में है और पूजा उस भक्ति का एक अंश है। मेरा मतलब समझ आए ना, स्तुतियां हैं, पूजा है, पाठ है, ये सब, और फिर वो तो जो बात मैं कहता हूं वो अलग है कि जिसमें कर्तावाद का पोषण नहीं हो। अभी सब बहुत हैं, ऐसी हैं, जे हैं, जे हैं, एक तो मुझे ये बात कहनी थी, एक बात और कहनी है फिर भूल जाता हूं, इसलिए भी याद आ गई तो कह देता हूं। वो जो बोल रहे थे स्तुति रूप प्रतीत पावन, क्या बोल रहे थे उसमें बोलना, चंद बोलो बोलो बोलो, बोलो। चरण आयो शरण जी के शरण आयो चरण जी, क्यों आना शरण में होता है कि चरण में होता है, शरण भी साथ में लग जाएगा लेकिन सीधा डायरेक्ट आने के साथ जुड़ता हो तो क्या जुड़ना चाहिए, शरण होना चाहिए ना। फिर मुझे विकल्प आया था कि मैं ये बता दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर सबके ख्याल में आ जाए, वो तो हम दिन रात बोलते हैं, आया बोलते हैं आयो, तो आयो के साथ में शरण, क्यों पब्बज्जामि शरणम है, चरणम नहीं है, अरहंते शरणम पब्बज्जामि, अरहंते चरणम पब्बज्जामि नहीं है, समझे ना, इसलिए उसमें चरण की जगह शरण पहले बोले तो ज्यादा अच्छा है। अब अपना प्रकरण चलता है, एक नंबर 194 पेज पे है ना, कुछ बाकी रह गया था ना, अभी हो गया था पूरा 96 का था, चलाओ शुरू करो।
सभावो हिसाहावो गुणेम सगपज्येम चेतेम दवस सर्वकालम उपाद व्यधुवतेम गुण चेत्र में पर्याय से उत्पाद व्यद्रव भाव से जो द्रव्य कास्तित्व है वह एक मात्र स्वभाव
द्रव्य का स्वभाव क्या है जैसा स्वरूपास्तित्व की चर्चा आरंभ हुई है ना अभी कल दो व्याख्यान अपन को इस गाथा पर हैं आज का और कल का परसों मैं कल शाम को जाऊंगा फिर 30 तारीख को आऊंगा और 30 तारीख के बाद एक दो दिन में फिर मैं शुरू करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि वहां से मैं ठीक ठाक वापस आ पाऊंगा स्वस्थ पूरा लेकिन स्वस्थ रहा तो मैं तत्काल शुरू करूंगा आकर के है ना नहीं तो एक दो दिन लेट भी हो सकता जो परसों से जो भी व्यवस्था होगी शांति जी बताएंगे दादा आपको करना है ठीक है तो शांति जी व्यवस्था करेंगे गुण चित्रमय पर्याय पर्याय के साथ चित्ते ही शब्द डाला है आचार्य देव ने चित्र का मतलब समझते हो क्या होता है ये क्या है ये सब चित्र है ना इन्हें चित्र क्यों कहते हैं ये अनेक रंग हैं जो अनेक रंग से बनता है उसे चित्र कहते हैं एक रंग से चित्र नहीं बन सकता आपको हम तो बना दें और पेंसिल लेके अभी हाल कागज पे बना सकते हो लेकिन ये एक रंग का है एक तो कागज का रंग और एक तुम्हारा रंग पेंसिल का रंग तो दो रंग हो गए ना तो चित्र बनने के लिए कम से कम दो रंग चाहिए फिर तो तीन हो चार हो पांच हो छह हो सात हो है ना तो चित्रमय पर्याय कैसी पर्याय विभिन्न प्रकार की हैं वो सब एक सी ही नहीं है क्या तो विभिन्न प्रकार की पर्याय द्रव्य का स्वभाव क्या है कि गुण और विभिन्न प्रकार की पर्याय गुण में तो विभिन्न प्रकार का होते नहीं अनंत गुण जो हैं जो अनादिकाल से अनंत काल तक वही उनका स्वरूप है आप कहोगे बेबी तो बदलते हैं तो जो बदलने को तो पर्याय कहते हैं इसलिए जब पर्याय शब्द हमने अलग से प्रयोग कर लिया तो फिर गुणों में बदलने की बात नहीं रहनी चाहिए है ना गुण अनेक और अनेक प्रकार की पर्यायों तथा उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है वह सदा काल है वह वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है देखो पांच चीजें वही गिना रहे यदि वास्तव में समझौता तो हो ही गया है कौन कौन सी चीजें उत्पाद व द्रव्य और गुणों पर्याय इसमें गुणों पर्याय पहले कहा उत्पाद व ध्रुव बाद में कहा और इससे कहा कि जो वस्तु इनसे मिली हुई बनी हुई है मिली हुई कैसी थोड़ी है पांच चीजें अलग अलग थी तो उनको मिला करके एक जगह इकट्ठा किया और पंच सकार चूर्ण बना दिया ऐसा थोड़ी है ये मतलब वस्तु के स्वभाव में ये पांच चीजें नहीं कहना चाहता हूं मैं पांच एंगल ऐसे हैं क्या कहेंगे हिंदी में अपन हाँ दृष्टिकोण में मजा नहीं आता है इसलिए मैं तो मुझे मालूम है अपेक्षा में नहीं आता है माने इसे पांच तरीके से अपन को देखना चाहिए पांच क्वालिटी जो हैं माने हैं तो अनंत लेकिन गुणपना पर्यायपना और उत्पाद व्यय और द्रव्यपना इन पांच एंगल से देखेंगे हम तो ये वस्तु का स्वभाव है और ये 24 घंटा प्रति समय रहेंगे ये नहीं कि ये कभी कभी नहीं है वहां ऐसा भी अपन देख रहे थे ना यम भक्ति ये भक्ति के उसमें तो मानू क्या लिखा मैंने पूरी पढ़ी नहीं है कि अज्ञानियों के बहुत तीव्र होती है, ज्यादा होती है, ऐसा लिखा है। बोलो क्या कह रहे हैं शांतिलाल जी? ऐसा लिखा है भी कुछ में, और ज्ञानियों के भी कभी कभी रेयर केस में होती है। क्या बोलो क्या कहें? यदि इसका अर्थ करता मैं करूंगा तो फिर तो वो सामने झगड़ा ही खड़ा हो जाएगा, है ना? तो उनने उसमें आधार दिया, कारण दिया कि अज्ञानियों के ज्यादा क्यों होती है, तीव्र क्यों होती है, है? तो उनने दिया क्योंकि वे उसे मुक्ति का कारण मानते हैं, है ना? और फिर बहुत आगम के प्रमाण भी दे देंगे। मैंने कल प्रश्न सुनाया था ना आपको, गुरु भक्ति सती मुक्ति क्षुद्रम किंबा न साधेत, है ना? कहां का है? सत्युना मुनि में गुरु की भक्ति क्या वो मुक्ति को दिला देती है, तो छोटे मोटे काम तो कैसे सिद्ध नहीं करेगी, माने वो करेगी ही, ऐसा उसने सूक्ति दी है। और वहां जो गुरु कौन है मानो, जिस प्रकरण में वो बात दी है उसे देखा आगे पीछे, वो कोई हथियार मथियार सिखाने की विद्या वाला है कोई जीवन वहां उस गुरु की बात है। जैसे अपने कहते हैं ना गुरु भक्ति, मैंने जैसे आपको शांति कुमार जी पढ़ाते हैं तो आपके हृदय में शांति कुमार जी के प्रति भक्ति है, ऐसी वो तो आत्मख्याति पढ़ाते हैं, होए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां तो उन सब लौकिक विद्याओं में उसे पारंगत कर दिया है। द्रोणाचार्य जैसा गुरु है वहां तो द्रोणाचार्य की भक्ति भी मोक्ष दिला देगी है? और क्षुद्रम जो चीज मोक्ष दिलाएगी वो गारंटी से क्षुद्र कामों को सिद्ध नहीं करेगी, ऐसी गारंटी है, ऐसी नहीं है कि करेगी। क्या क्या समझे शांति जी? क्योंकि शुद्ध भाव ही मुक्ति दिलाएगा तो वो पुण्य बंध नहीं कराएगा, पुण्य बंध शुभ भाव से होंगे, वो तो कर्म को काटेगा, वो कर्म को बांधेगा नहीं, कर्म को उदय में नहीं लाएगा। और ये तुम्हारे क्षुद्र क्षुद्र जो काम हैं वो तो पुण्य के उदय से सिद्ध होंगे। समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं? जो मुक्ति का साधन होगा वो क्षुद्र कामों का साधक नहीं होगा, और जो क्षुद्र कामों का साधक होगा वो गारंटी से मुक्ति का साधक नहीं होगा। तो उसको सिर्फ सामान्य नीति जैसे लोक में होती है ना, उस तरह ही देखना, उसे आगम प्रमाण के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, और आगम प्रमाण के रूप में पेश करने की भी जरूरत नहीं है ना। ये पांच चीजें हैं, वो वस्तु के होने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आवश्यक क्या है? अनिवार्य क्या है? एक समय भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी द्रव्य हो, अनंत द्रव्यों में जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, कि उसमें गुण ना हो और गुणों का प्रणमन रूप पर्याय ना हो, है ना? मैं द्रव्य की पर्यायों की बात नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, समझे ना? वो तो बहुत स्थूल कथन था वो इस दृष्टि से, क्योंकि हमको गुण पर्याय तो एक एक समय की ख्याल में नहीं आती हैं, तो वो मनुष्य पर्याय देव पर्याय जो ऐसी बात कही थी ना, और उसमें मैंने हमेशा ही कोई ना कोई पर्याय होगी ही, वहां भी घटित हो जाएगी कि मोक्ष में तो नहीं होगी ना, उसमें चार गिनाई, इसलिए कह रहा हूं कि मोक्ष में सिद्ध पर्याय होगी, हम तो उसे भी पर्याय कह देंगे। हमारे तो गतियां चार होती हैं, लेकिन हम तो जब पढ़ाएंगे कोमल सार तो पंचम गति भी कहेंगे, ये भी पढ़ाएंगे। गतियां कितनी होती हैं बोलो सब? कोई पांच लिखेगा तो एक नंबर नहीं मिलेगा, गतियां चार होती हैं और हम पांच गिनाएंगे, क्यों? इंद्रियां पांच होती हैं और हम छह गिनाएंगे, क्यों? संयम तीन प्रकार के होते हैं, हम संयम आगना छह प्रकार की गिनाएंगे, समझ में ना मेरे कहने का मतलब? क्योंकि हम तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में शामिल करते हैं, जो चीज नकारात्मक है पंचम गति माने जिसमें गति का लक्षण कोई नहीं मिलता है। फिर गति क्यों कह रहे हो? क्योंकि अब इस गति वालों को गति में ही समझ में आता है, हम क्या करें इनसे तो मुक्त है। एक तरह पंडित कैलासन जी आए थे, उनने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि इस सिद्धांत किसे कहते हैं, माने तुमने बताया पहले मैंने कभी कि नहीं सिद्धांत? तब हम कहते हो जो आप जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत है, अनेकांत सिद्धांत है, उन्होंने कहा नहीं, ये बोलो जो समय सार सिद्धांत ग्रंथ है कि नहीं, गोमर सार सिद्धांत ग्रंथ है कि नहीं, तो हाँ ये सिद्धांत ग्रंथ है। तो उन्हें कैसे सिद्ध किया था कि जिसके हर अधिकार में अंत में सिद्ध का वर्णन हो वो सिद्धांत ग्रंथ है, इस तरह ख्याल में था। हर अध्याय में विषम तू परिपणा बनना है ना, गई इंद्रिय सुखाए जोगे वेदे कसायणाणे है ना, तुम्हें विषम तू परूपणा भंडा, बीस परूपणाएं हैं, तो बीस परूपणाओं में हर परूपणा के अंत में गुणस्थान का भी वर्णन होगा, तो अंत में गुणस्थान अतीत आत्मा का वर्णन होगा। अब ये कहेंगे अच्छे भी कम में बीला सीधी भूजा निरंजना निच्चा अठ गुणा के दिख चालो यज्ञ वासिनो सिद्धा, वो जा करके जिसका हर अध्याय सिद्ध में अंत हो वो सिद्धांत ग्रंथ है, समझ में आया? अरे छड़ वाला सिद्धांत ग्रंथ है क्या नहीं है? रही है अनंता मोक्ष में ही जाके खत्म करें हैं? अपने प्रथमानी हो हंसी जी, यही सिद्धांत ग्रंथ है। वो कहानी को तब तक खत्म ही नहीं करते, कब तक? जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचा दें। अनंत महा को भगवान महावीर को पकड़ेंगे कहां से? मारीच से, क्यों? नहीं नहीं मारीच के आगे अभी भील से, और भील के आगे भी कहीं जा पाए तो और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि हमारा ये जैन धर्म भील से भगवान बनाने वाला धर्म है। क्या हमारा बस चले तो हम वहां से शुरू करें, कहां निगोद से वहां से पकड़े हैं? लेकिन उसमें कहानी कहने को कुछ नहीं होता ना, तो क्या करें? एक लाइन में निपट जाएगा, वहां से बात पकड़ेंगे तो। लेकिन अंत कब होगी? जब तक भगवान महावीर हो गए, बाबा पर से मोक्ष नहीं चले गए, तब तक वो हम उसे अंत नहीं करेंगे, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, मर के वहां गए वहां गए, अंत नहीं आया क्या? प्रथमानियों का ये सिद्धांत है कि वो कहते हैं ना, उन पुराण पुरुषों को हम वर्णन करते हैं जिन्हें जो मोक्ष गए ना, वे हमारे ज्यादातर पुराण पुरुष हैं। कैसे आप कैसे कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण नहीं गए, श्री कृष्ण नहीं गए, तो हमने खत्म कहां किया? आएंगे वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, वहां चालू रखा क्यों? फिर तीर्थंकर होंगे, फिर वे फिर वहां से मोक्ष चले जाएंगे, हम कोई को छोड़ेंगे नहीं। और जिनको मोक्ष में जाने ही नहीं, उन अभद्रों का हम वर्णन करेंगे ही नहीं, बीच में आ जाए तो वो अलग बात है, दूसरे के वर्णन में इसे बोलते हैं, ये कथाएं होती हैं, और मेन कथा के साथ में एक कथा होती है, क्या बोलते हैं? उप कथा भी नहीं, किसी एक नाम और भी अच्छा है ऐसे है? कि जिसको मतलब उसकी सहायक जो उसको सहायता पहुंचाती है। मैं जिसके लिए उदाहरण देता हूं कि रामचंद्र जी की प्रवचन चल रहा था रामायण पर, तो कल रामचंद्र जी सरयू के किनारे पहुंचे, तो सरयू में लोग नाव में बैठ के पार हो रहे थे, जो भी दो पैसा चार पैसा उस वक्त लगता होगा वो देकर किराया वो पास हो रहे थे, तो रामचंद्र जी बैठने लगे और कहा भी दे दो पैसे में बैठते थे, छह पैसे ले, क्योंकि तीन जने थे ना, राम सीता और लक्ष्मण। तो उसने कहा कि नहीं, यहां बगल में बैठो। नहीं लिए पैसा, बगल में बैठाया, तो नहीं तुम्हें बात नहीं करूंगा। क्यों? एक साधारण से मल्लाह ने राजा को रोक दिया। देखो ये जमाना ऐसा होता है, कुर्सी पे होते हैं तब अलग बात होती है, और जब कुर्सी पे से उतर जाते हैं तो अलग बात होती है। तो कुर्सी पे बैठने वाले से बैठे तो कभी है ही नहीं, तो अलग बात थी। अब कुर्सी तो उतर गए ना, तो उसने भी रोक दिया कि नहीं नहीं रोका, कि साहब मैं आपको ऐसे नहीं बैठने दूंगा। क्या करेगा, कैसे बैठने देगा? कि मैं पहले आपके चरण धोऊंगा। क्यों? किसी के तो धो नहीं रहा। यदि नाव की पवित्रता का सवाल होता तो सबको पैर धुला कर बैठा लेना चाहिए ना, जैसे मंदिर में सब जाते हैं। अकेले हमारा ही क्यों धोना? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पैरों की धूल बहुत खतरनाक है। मैंने सुना था कि एक पत्थर की शिला पर पड़ गई थी, तो वो पत्थर की शिला औरत बन गई। कहानी आती ना अहिल्ला, अहिल्ला का नाम सुना? अहिल्ला को श्राप दिया था पहले भ्रम में, तो वो पत्थर बन गई थी। और जब ये गए तो इनका पैर उस पर पड़ गया भाग्य से पत्थर नीचे, तो इनके चरणों की धूल के प्रभाव से वो अहिल्ला बन गई, द्वारा उसका शराब से मुक्त हो गई। तो उनने कहा ऐसा हो गया था मैंने सुना है, यदि ये मेरी नाव औरत बन गई तो मैं क्या करूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं, एक औरत को मुश्किल से पाल पाता हूं। एक की जगह दो औरतें हो जाएंगी, और आजीविका का साधन मेरे पास ये एक ही नाव है जो मैं खुद चलाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं नावों का सैकड़ों नाव हुए और नौकर चाकर चलाते हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद ही चलाता हूं, मेरी एक नाव है, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा के लिए मैं आपके चरण धोऊंगा। तुलसीदास जी ने ये अपनी रामायण में बात लिखी। तो फिर आगे फिर रामचंद्र जी उतर गए, उतरने लगे तो उन्हें पैसा देने की शुरू करी। तो भाई मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे। क्यों नहीं लेगा, सबसे लिया है ना, तो हमसे क्यों नहीं लेगा? नहीं लूंगा। क्यों? कि नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। समझ में आई कि नहीं आई? अपन तो नाई है नहीं, अपन को कैसे पता चलेगा? लेकिन जो अपने धंधे वाला होता है वो धंधे वाले से कम वो नहीं करता, इतनी तो वो नाई भी निभाता है कि नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। तो हम दोनों एक जात के हैं, एक ही एक सही काम करते हैं, तो हम तुमसे उतरवाई कैसे ले सकते हैं? तुम संसार समुद्र से लोगों को पार उतारते हो और मैं इस नदी से पार उतारता हूं, क्या फर्क है? पार उतारने का काम हम दोनों ही करते हैं। क्यों? तो मैं अभी आपको पार उतार देता हूं, जब मौका लगे तो आप मुझे संसार सागर से पार उतार देना, बस काय में इसके बदले में। फिर आगे रामचंद्र जी चले तो तुलसीदास जी ने कहानी आगे बढ़ाई। तो एक आदमी बोला कि साहब फिर उसका क्या हुआ, नाव का क्या हुआ? उसका क्या बोलते, नाव चलाने वाले को नाविक क्या बोलते, जो भी, उसका क्या हुआ? तो उसने कहा तू रामायण सुनने आया है कि केप टाउन? मैं तो रामायण कह रहा हूं। तो बीच में जो कहानी आती है वो क्यों आती, काय के लिए आती है? वो जो मूल कहानी है, ध्यान से सुनना, बहुत सिद्धांत बता रहा हूं, बहुत बड़ा, उसको बल देने के लिए आती है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आती है। हमने केवट से कुछ लेना देना नहीं था, उसने लिया था कि नहीं लिया था चाहे इनने कल्पना ही करी हो अपने मन से, लेकिन उनके चरणों की धूल की कितनी महिमा थी, और वे संसार सागर से पार उतारते हैं ये दो बातें तुलसीदास को कहनी थी तो उनने अपनी चतुराई से इस तरीके से कही, बस उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब उन्हें केवट से क्या लेना देना, केवट की कहानी उनने सिर्फ अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कही थी, वो बात खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं कुछ भी बीच में थोक दिया। अपन लोग उदाहरण देते हैं तो अपना जो बात कही है ना उसके किसी पोषण के लिए देते हैं ना, कि भाई एक अब तुम्हें याद आ गई ये कहानी, ख्याल में है ना, फिर तुमने ठोक दी फिर प्रश्न के बीच में, ऐसा नहीं पता। कुछ लोग ऐसे पर्चा बना के ले जाते हैं प्रश्न में रख लेते हैं, और बड़े बड़े पंडित लोग भी रख लेते हैं, कुछ कॉपी मापी बना रखी हैं तो कॉपियां भी रख लेते हैं। मैं कोई बुराई के अर्थ में नहीं कहता हूं, मैं तो उसे बहुत अच्छा मानता हूं कि पूरी तैयारी के साथ वो अपनी बात कहने जाते हैं। मुझे तो एक बात बतानी है उसके माध्यम से, इसलिए कहता हूं। तो लेकिन वो जो वो लिखा है पर्चे में उससे पता चल जाएगा कि वो किस स्तर का विद्वान है। उसने क्या लिखा, मुझे ये डर है कि मैं ये बात कहना चाहता हूं और ये भूल ना जाऊं। कौन तत्व की गहरी बात है कि मुझे भक्ति का स्वरूप बताना है, कि मुझे अब सुबह की बात आई थी उसका कमेंट्स करना है, तो मैं भूल जाने का डर होगा तो इतना सा लिख लूंगा बस खत्म, कि भक्ति किसे कहते हैं, बस खत्म। आप समझ रहे ना, ऐसा कोई तात्विक पॉइंट मुझे बताना है और वो भूल जाऊंगा दादा तो उसे नोट कर लेते हैं। और दूसरे, आज मैं ये कहानी कहूंगा तो मैं गाय की कहानी सुनाऊंगा, कल गधे की सुनाऊंगा तो गधा की कहानी, तो कहानी लिखता, उसे कुछ बताना नहीं है, उसको समझाने के लिए बीच में गधे की कहानी आए तो सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवचन कोई गधे की कहानी पे प्रवचन थोड़ी होना है, समझ में आएगा, मतलब उसके उस नोटिंग से मालूम पड़ता है कि वो किस टाइप का विद्वान है, किस स्तर का विद्वान है। एक बात कह करके तुम लोगों को मैंने एक बात सिखा दी, समझ लो हैं? कि नोटिंग में क्या नोट किया जाता है, समझ रहे ना। अकेले कहानी के सावधान ही नोट कर ले उसका मतलब नहीं है। हमको ये निर्णय करना चाहिए कि हमको क्या समझाना है, फिर उसके लिए उदाहरण तो वो कहते ना आकाश से टपक के आएंगे, तो सोचने की जरूरत नहीं है, बनते कैसे हैं ये तो साधारण बात है। वो मेरे ऑटो रिक्शा वाले कौन से है ना, और जितने बनाए हैं ये ऐसे ही बन गए, इतने लंबे लंबे उदाहरण। मैंने कभी उन उदाहरण को बनाने की कोशिश नहीं की, सोची नहीं, किसी से सुनी नहीं, मेरे दिमाग में तो एक ही बात आई कि हमको ये समझाना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, और साधारण जनता को समझाना है, बच्चे बच्चे को ये समझाना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होंगे तो ही मुक्ति का मार्ग है, तत्वा सूत्र के पहले सूत्र पर व्याख्यान करना है। बोलो, हमें तो क्या समझाना है, हम यहीं से बोलेंगे, महाशास तत्वा सूत्र में पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मुक्ति मार्ग का कहा है, और बनाएंगे दो मिनट बोलेंगे और फिर ऑटो रिक्शा शुरू कर देंगे। क्यों, बीच बीच में आएगा ना वो कि श्रद्धा बिना नहीं होता, ज्ञान बिना नहीं होता, जब तक पता नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, फिर जीवन में नहीं उतरेगा तो उसके जब तक कपड़ा उपड़ा नहीं बदलेंगे, जो भी मतलब धीरे धीरे एक एक एंगल से हमारा जन्म अंदर से उद्देश्य क्या बना, मोक्ष मार्ग समझाना। अब बोलो कितनी बड़ी सभा हो तो वो कहानी भी चल जाएगी, बढ़िया प्रवचन भी हो जाएगा और मोक्ष का मार्ग भी प्रतिपादित हो जाएगा। हम मोक्ष के मार्ग के बाहर नहीं गए, हमने कोरी गप्पे नहीं सुनाई, हमने उसमें से कोई चीज बताई। और हम पर जो आरोप लगाया जाता है कि ये चारित्र को नहीं मानते हैं, तो हम कहते हम तो कह रहे हैं कि ज्ञान और श्रद्धा होने से क्या होता है, वो मकान नहीं बनेगा, वो फटा कुर्ता वैसे ही फटा रहेगा, वो जब तक बदलेगा नहीं कब तक, जब तक कि वे पैसा उसे नहीं मिलेंगे। ऐसे हमारा जीवन भी अकेले श्रद्धा ज्ञान से नहीं बदलेगा, हमारे जीवन में जो चेंज आएगा वो चारित्र से आएगा, तो हम तो चारित्र की महिमा गा रहे हैं। चारित्र वाला भी खुश, श्रद्धा वाला भी खुश, क्योंकि उसे कह रहे हैं कि सब में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कितना ही ज्ञान हो जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंक में पैसा लेने पहुंचा ही नहीं। आगे ख्याल में यानी कदम कदम पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी चलेगा, वो कहानी भी चलेगी, जनता भी बढ़िया से बढ़िया होगी, चाहे जैसी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है बोलो। क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले का काम किससे नहीं पड़ता, कौन नहीं जानता है ये सब बात, ये बात सच्चाई के कौन अपरिचित है। तो ये हमारा चिंतन का तरीका, प्रतिपादन का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये सब ऐसा होना चाहिए। टीका पढ़ते हैं आप। अब मैंने अभी क्या कहा गाथा में, क्या चीज पढ़ी, इतनी देर में क्या बताया, गुण पर्याय, गुण और विचित्र प्रकार की अनेक पर्याय और उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये पांचों मिलकर हर द्रव्य का, हर वस्तु का स्वभाव है। कोई भी वस्तु जगत में ऐसी नहीं होगी कि जो इन पांच के बिना होगी। अब टीका में भी उन्हें यही बताना है, जो भी उदाहरण अधिक देंगे, जो भी देंगे, जरूर समझेंगे नहीं समझेंगे, वो टीका में भी यही बताएंगे। देखो, अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है, अब ऐसा नहीं कह सकते अस्तित्व जीव का स्वभाव है, ये नहीं कह सकते आप, जीव ही तो द्रव्य है ना। अस्तित्व पुद्गल का स्वभाव है, ये नहीं कह सकते आप, माने वो द्रव्य शब्द, जो जो द्रव्य हैं हम उसका किसी का भी नाम ले देंगे नहीं चलेगा, आपको द्रव्य ही कहना पड़ेगा। क्यों कि ये स्वभाव अकेले उसका नहीं है, किसी दूसरे का बोलोगे तो अव्याप्ति नाम का दोष हो जाएगा, क्योंकि उसमें है अन्य में भी है, अतिव्याप्ति होगी जो भी व्याप्ति अव्याप्ति जो भी होगी। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है और वह अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से, देखो अभी इसमें तीन हेतु दिए हैं, ये होने से लिखा ना, जहां देखो तीन होने से हैं, देखो होने से फिर दूसरा प्रवर्त, देखो पहला तो क्या है, निरपेक्ष होने के कारण वो अस्तित्व किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता, मैं किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा हूं ऐसा नहीं है, मेरा होने के लिए किसी पर की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों जी, कि मैं रहूं अनंत काल तक जिंदा, मैं जिंदा माने जीवन मेरा रहे, तो इसके लिए भोजन तो चाहिए ना, तो कहते हमें जीव रहने के लिए, हमें द्रव्य रहने के लिए किसी भोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, अन्य से निरपेक्ष है ना, हम जीव और हम द्रव्य किसी पर की अपेक्षा से नहीं है, हमारा द्रव्यत्व और हमारा जीवत्व कोई खाना पीना पुण्य कर्म का उदय पाप कर्म का उदय तुम्हारे सहयोग नौकरी इनसे कोई संबंध नहीं है, वो अत्यंत निरपेक्ष है, समझ गए आप, कैसा अनादि अनंत लिखा ना, क्या लिखा, निरपेक्ष होने के कारण वो अनादि अनंत है, वो किसी की अपेक्षा के बिना अनादि से अनंत तक रहने का उसका अपना स्वयं का सामर्थ्य है। अहेतुक एक वृत्ति एक रूप वृत्ति से सदा प्रवर्तित होने के कारण विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से, दूसरा ये है कि वो अहेतुक है, उसके होने के लिए कोई हेतु की जरूरत नहीं है, तो आप बताओगे कोई हेतु, कहते हैं और अहेतुक एक वृत्ति से सदा प्रवर्तित होने के कारण, एक वृत्ति से मन उत्पाद वै ध्रुव उत्पाद वै ध्रुव उत्पाद वै ध्रुव उसमें निरंतर होता ही रहेगा, विभाव धर्म से निरपेक्ष है, भाव और भाववानता के निरपेक्ष होने से, दूसरा से कौन, एक था अनादि अनंत होने से, फिर दूसरा है विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से, माने विभाव धर्म की अपेक्षा नहीं, क्या तीसरा भाव और भावबानता के कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद न होने से तीसरा भाव भावबान ऐसा भेद है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, है ना, काय में किन में नहीं है, द्रव्य में और पर्याय में, यानी गुण में और पर्याय में, उत्पाद व्यय में द्रव्य में और इनमें सब में मिला करके किसी में भी प्रदेश भेद नहीं है। इन सब के प्रदेश एक ही है, एक जीव के, एक जीव को जो अस्तित्व चाहिए ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हमारी पर्याय तुम्हारी तुम्हारी की पर्याय, ऐसा नहीं। द्रव्य के साथ एकत्व धारण करता हुआ अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, यदि ऐसी स्थिति है तो वो द्रव्य का फिर क्या है, क्यों है? ऐसा है कैसे द्रव्य, क्यों कहते द्रव्य का स्वभाव है, और समन्त भद्र तो इतना कह देते हैं स्वभाव हो अतर्क गोचरा, कि स्वभाव में तर्क नहीं होता है। अब अभी करना चाहें तर्क तो हम चाहे जहां कर सकते हैं, मिर्ची सरपरी होती है क्यों, नमक खारा होता है क्यों, यदि मिर्ची खारी होती और नमक सरपरा होता तो क्या तकलीफ थी है? तो आचार्य कहते हैं भाई है ना, हम क्या करें, वो होती तो हम हो जाती, लेकिन ऐसा वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि स्वभाव में तर्क नहीं होता, कि ऐसा क्यों हमसे नहीं पूछ सकते आप, अग्नि गर्म है, मिर्ची तरपरी है, नमक खारा है, इसके बारे में हमसे नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है, आप ये पूछो क्या है कैसा है तो हम बता सकते हैं, क्या समझे ना। अब ऐसे जीव ज्ञानानंद स्वभाव ही है क्यों है, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। अभव्य ने ऐसा क्या पाप किया है जो मोक्ष नहीं जा सकता, बिना क्या गलती की है कि ऐसा नहीं पूछ सकते, बस इतने जीव मोक्ष चले जाएंगे, बेचारा नहीं जा पाएगा, उसके साथ पक्षपात हुआ है, किसने पक्षपात किया है, स्वभाव ही उसका ऐसा है। अब उल्टा कहो ना कि अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा, मैंने संसार नहीं छोड़ना पड़ेगा उसे, देखो उसको ये अधिकार है कि वो हमेशा रहेगा, अब हम तो बेचारे छोड़ के जाना पड़ेगा हमें, बोलो ये क्यों कहते हो कि हमें अधिकार है कि हम चले जाएंगे छोड़ के यदि ये भी तो वो हो सकता है ना, उसका स्वभाव है भाई साहब, स्वभाव वो अतर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, नहीं तो कहीं अंत ही नहीं आएगा, काय में क्यों 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 कहां तक क्यों क्यों लगाते जाओगे, है ना। देखो आलू में अनंत जीव है, क्यों है साहब, आलू में है और लौकी में नहीं है, क्यों नहीं है साहब, लौकी में भी होना चाहिए है? और लौकी में नहीं है तो आलू में भी नहीं होना चाहिए है? आलू तो लौकी से भी अच्छा लगता है तेरे अच्छे लगने के हिसाब से नहीं है, हम तो सर्वज्ञ भगवान की बारी में आया है तो हम बता सकते हैं किसमें है और किसमें नहीं है, ख्याल में आई ना, इसमें कोई तर्क करे हमसे तो हम इस क्यों का जवाब नहीं दे सकते, है ना, इसने ऐसा ही लिखा ना कि वह द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, जिसमें क्यों का प्रश्न नहीं लग रहा है और जो चीजें हैं तो वो द्रव्य का स्वभाव होना चाहिए, जब जिसमें क्यों नहीं लगता है वो सब उस वस्तु का स्वभाव होता है, समझ रहे ना, जिसमें क्यों नहीं लगता है वो उस वस्तु का स्वभाव होता है। आप देखो जानवर हैं इतने, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ऊंट है, तो इनके अलग अलग स्वभाव हैं, एक को तुम ऐसा डंडा दिखाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारी ऊपर चढ़ बैठे है? एक पर डंडा मारते रहो तो ही वो तो कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारोगे तो बैठ जाएगा कि बैठ जाओ तुम हमारे ऊपर, क्यों मेरा समझ में आई था, मैंने उसका स्वभाव है ऐसा क्यों ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, स्वभाव तर्क गोच, तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से विभाव धर्म से विलक्षण होने से और प्रदेश भेद न होने से अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही है। इन दो पंक्तियों में चार पंक्तियों का संक्षिप्तीकरण कर दिया, जो आता है ना आपको अंग्रेजी में इसका क्या करो क्या बोलते हैं, प्रेसी समझी नहीं, प्रेसी फिर ऐसे ही चलते आते समझते हैं होता है आजकल के नहीं माने एक पैरा देते हैं और उसका मन थर्ड रखो और टू थर्ड निकाल दो तो ये पैरा आपको ऊपर का चार पेज का दिया अब आपको इसमें संक्षिप्तीकरण करना है तो नीचे की पंक्ति संक्षिप्तीकरण है मैंने भी आपको कहा था होने से देखो कहा था ना होने से है ना तो होने से के वहां जो कारण बताए थे उनको निकाल दिया इसलिए वो छोटा हो गया तीनों होने से को रखा और उनकी जो विस्तृत व्याख्या की थी वो छोड़ दी है ना तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से उसमें लिखा था अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से तो अनादि अनंत होने से का कारण बताया था ऐसे तीनों में उन तीनों के वो कारण जो बताए थे वे हटा दिए और तीनों का ये किया निष्कर्ष निकालने का तरीका ये है जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है उस प्रकार द्रव्यगुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध नहीं होता इसलिए उनका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है वो क्या कह रहे देखो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जो चीज है कोई द्रव्य का अस्तित्व है तो वो अपने में पूरा हो जाता है समझे जैसे जीव अपना अस्तित्व अपने आत्मा का तो अपने द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद वे ध्रुव इस ये अपन है वो इतने में हमारा अस्तित्व पूरा हो जाता पर से हमें कोई संबंध नहीं है लेकिन अकेले द्रव्य को हम अस्तित्व माने गुण में माने ज्ञान में कोई अस्तित्व माने मति ज्ञान में अस्तित्व माने पर्याय हो ना गुणों पर्याय उत्पाद में अस्तित्व माने व्यय में अस्तित्व माने अकेले ध्रुव में अस्तित्व माने तो क्या दिक्कत है क्योंकि वो प्रत्येक में समाप्त नहीं होता उसके बाहर भी रहता है हमने अकेले गुण में माना ज्ञान में माना अस्तित्व तो सुख में भी है हमारा अस्तित्व ये कि हमारा अस्तित्व जहां समाप्त हो जाए उतनी सीमा हमारी है तो उसके पहले द्रव्यगुण पर्याय और वो क्या नाम उत्पाद वे ध्रुव इनमें हमारा अस्तित्व सब में फैलता है उनमें एक में समाप्त नहीं होता इसलिए हम एक हैं हम उनके साथ कह सकते हैं हम एक हैं हमें पूरी जैन समाज एक है नहीं कह सकते तो दिगंबर दिगंबर एक है तो कह सकते ना सितंबर नहीं लू अला दो कर दो भैया अच्छा कह सकते मोक्षु एक है कह सकते हो क्यों अरे तो मोक्षु तो जाने दो तुम अपने घर वाले सब एक हो ये भी नहीं कह सकते कि सच्ची कह रहे आप घर वाले तो आजकल एक होते ही नहीं उन्होंने तो अरे उसकी बात हम नहीं कर रहे क्या हम तो कह रहे तुम वो तुम्हारा शरीर ये एक नहीं है क्योंकि शरीर का अस्तित्व हम में नहीं आता और हमारा अस्तित्व शरीर में नहीं जाता प्रत्येक में समाप्त होना चाहिए शर्त है ना जिस प्रकार अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है उस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता ख्याल में आ गई बात क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है यानी हमें अस्तित्व सिद्ध करना है तो हम इससे उसकी सिद्धि होगी उससे उसकी होगी क्योंकि इन पांच चीजों में मिलनी चाहिए ना तो ये पांच चीजों का रूप एक दूसरे में होगा उसकी वजह से उसकी सिद्धि होगी अन्यथा वो सिद्धि नहीं बनेगी यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध नहीं होता इसका नाम है उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं होती इसलिए उसका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है देखो ये मैं कहता हूं अगली क्या कहने वाले हैं उसको इनने इसमें डाल दिया अब तुम पूछो सोने की भांति माने क्या तभी बताएंगे पहले बता सकते थे दो तरह का प्रतिपादन होता है एक समास और एक व्यास जानते तो होंगे पढ़े होंगे ना सब संक्षेप में कह दिया जाता है फिर उसमें व्याख्या की जाती है और एक बाद में पहले व्याख्या कर दी जाती है बाद में संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है اور آج کل ایسا بھی ہوتا ہے ہم پہلے بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بتانے والے ہیں اور انت میں پھر سنکھپتی کرن کر دیتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے. تو وہی باتیں کریں کہ کے سونے کی بھانتی. یہ سونے کی بھانتی کیا ہے؟ یہ جو اپنی ہے نا پنچتندر کی اسٹائل, وہ اسی اسٹائل میں انہوں نے سدھ کیا. معلوم تو ہوگا تمہیں پنچتندر کے معاملے میں ہندوستان کی سب سے ادھک بکری والی, سب سے ادھک بھاشاؤں میں چھپنے والی کتاب کا نام ہے پنچتندر. اربوں کی سنکھیا میں چھپی ہے, سارے وشو میں مان ہے, سب لوگ پڑھتے ہیں اسے. اس میں اور کچھ نہیں ہے, بس ایک منٹ کی بات بتاتا ہوں کہ ایک راجا تھا. پھر راجا تو کہانی بنائی ہے, وشنو شرما نام کا ایک لیکھک تھا, اس نے اپنی کہانی من سے کلپنا کر کے بنائی کہ ایک راجا تھا اور راجا کے 500 بیٹے تھے اور ایک سے ایک ادنڈ جو پڑھتے نہیں تھے, جو بھی ادھیاپک کو رکھتے تھے تو اس کو پریشان کر کے بھگا دیتے تھے. تو وہ بہت پریشان تھا, تو اس نے گھوشنا کی کہ جو میرے بچوں کو پڑھائے گا اس کو میں آدھا راج دوں گا اپنا, اور اپنی لڑکی سے اس کی شادی کر دوں گا, جمائی بنا لوں گا. ایسی اس نے گھوشنا کی. تو وہ جو وشنو شرما نام کا لیکھک ہے, اس نے وہ مکھ پاتر کو بھی وشنو شرما ہی بنایا. تو وشنو شرما نام کا ایک پنڈت آیا اور اس نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا تمہارے بیٹوں کو, کہ بہت ادھم ہے ایک سے ایک, کہ ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا. تو اس نے جا کر کے سب کو اکٹھا کر کے دے دیا. اب وہ تو سب ان کو اڑانے کے چکر میں تھے سب. تو اس نے کہا میں بیٹا تم کو آج ایک کہانی سناؤں گا, پھر کڑا پڑھائی اپن کل سے کریں گے. ہاں اچھا کہانی سناؤ کہانی سناؤ. کیونکہ وہ جو اڈنتا شروع کر دیتے تھے نا, تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو یہ واقعہ بول کے اڈنتا ختم کر دی, پھر کہانی سنائی. تو کہانی میں کہانی تو سناؤں گا بیٹا تمہیں, لیکن تم ایسا مت کرنا جیسا اس نائی کے ساتھ اس نے کیا تھا. کہ سب نائی کے ساتھ کیا کیا تھا کس نے؟ کہ بیٹا ایک کل تو کل دوڑے دوڑے آئے تو نائی کی کہانی سنائی. تو نائی کی کہانی میں پھر وہ کہتا ہے تم ایسا مت کرنا جیسا اس سیار نے شیر کے ساتھ کیا تھا. کہ سیار نے شیر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہ کل. ایسے کر کر کے اس نے سینکڑوں کہانیاں سنائی, اور ہر کہانی میں ایک راجنیتک سدھانت رہتا تھا. سننا کہ راج کیسے کرنا چاہیے. راجکمار تھے نا, تو انہیں راجنیتی سکھانی تھی. تو راجنیتی کا جو پراپر سدھانت تھا دادا, وہ ایک ایک کہانی کے مادھیم سے, کیونکہ لوگ ایسا دھوکا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ, تو ایسے دھوکے سے بچنا, مطلب سمجھ گئے نا, یہ سکھائی. اور اس نے جیت لیا آدھا راج, اور شادی بھی ہو گئی. بےچارا کنوارا تھا. میرے کہنے کا مطلب ایسی, تو دیکھو اس میں بھی وہی ہے. کیسے کیا کہا؟ اس لیے اس کا استتو ہونے سے کیسا سونے کی بھانتی. اور سونے کی بھانتی کیا ہے؟ ایک ٹائپ